आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हुए हैं भव्या पांडे के साथ। और आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया में साइबर अपराधों से ऑस्ट्रेलियाई लोगों और व्यवसायों दोनों को ही होने वाले औसत वित्तीय हानि यानी एवरेज फाइनेंशियल लॉस प्रति वर्ष बढ़ते जा रहा है। दुर्भावनापूर्ण साइबर खतरों का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए जिम्मेदार एजेंसी चाहती है कि कुछ पासवर्ड्स की आदतें यानी पैटर्न्स को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि साइबर अपराधों में होने वाले नुकसान की मात्रा लगातार ही बढ़ रही है। ऑस्ट्रेलियन सिग्नल्स डायरेक्टरेट यानी ASD के अनुसार वेरिफिकेशन के लिए अतिरिक्त चरणों के बिना केवल उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्रणाली पर निर्भर रहने से ऑस्ट्रेलियाई लोगों का डेटा हैकिंग के प्रति संवेदनशील हो गया है। आपको बता दूं कि पिछले साल ऑस्ट्रेलिया भर में साइबर अपराधों के व्यक्तिगत पीड़ितों को औसतन $33,000 का नुकसान हुआ था, जो कि 8% की वृद्धि है। ऐसे में मंगलवार को ASD ने अपनी वार्षिक साइबर थ्रेट रिपोर्ट जारी की, जिसमें खुलासा किया गया कि व्यवसायों को और भी अधिक नुकसान हुआ है, जो दोगुना होकर अब लगभग $2,00,000 प्रति अपराध है। ऐसे में ASD की महानिदेशक एबिगेल ब्रैडशो ने SBS न्यूज को बताया है कि अब केवल पासवर्ड से आगे बढ़ने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि पासवर्ड्स का उपयोग खत्म हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि और अधिक तकनीकों की आवश्यकता होगी, जो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को सक्षम करें, ताकि आप कभी भी केवल उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड पर निर्भर न रहें। दरअसल ऑस्ट्रेलिया साइबर अपराधियों और स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर एक्टर्स दोनों के निशाने पर तेजी से बढ़ रहा है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिस तरह से ये साइबर क्रिमिनल्स संगठनों, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर्स और व्यवसायों यानी बिजनेसेस तक पहुंच प्राप्त कर रहे हैं, आने वाले समय में डेटा से संबंधित कई चुनौतियां आ सकती हैं। दरअसल बात ऐसी है कि नेटवर्क अब केवल हैक नहीं हो रहे हैं, बल्कि अनऑथराइज्ड एक्सेस प्राप्त करने के लिए हैक किए गए या चुराए गए क्रेडेंशियल्स के जरिए उनमें ब्रीच किया जा रहा है। बड़े संगठनों को प्रभावित करने वाली लगभग आधी ऐसी घटनाओं में असली यूजरनेम और पासवर्ड का इस्तेमाल करके पहुंच प्राप्त की गई थी, जिन्हें अक्सर साइबर अपराधियों ने डार्क वेब पर चुराया या खरीदा था। ऐसे में क्योंकि ये पासवर्ड्स असली होते हैं, इसलिए इसे ट्रैक करना मुश्किल होता है। पासवर्ड्स और यूजरनेम्स सिक्योरिटी यानी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी कमजोरी बने हुए हैं, और अक्सर साइबर अपराधी घर के ऑफिस के राउटर को भी निशाना बनाते हैं और अपनी गतिविधियों को छिपाने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में आज डेटा, पासवर्ड्स, प्राइवेसी यानी कि गोपनीयता और कई और मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं करिश्मा खन्ना। करिश्मा खन्ना यूनिवर्सिटी ऑफ टैस्मेनिया में डेटा इंजीनियर हैं और बताती हैं कि किस तरह से आप अपने डेटा को सुरक्षित कर सकते हैं। करिश्मा, आपका SBS हिंदी पर बहुत बहुत स्वागत है। आप हमें ये बताएं कि ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता क्या है?
टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप पासवर्ड डालने के बाद अपने मोबाइल या अपने ईमेल आईडी पे एक कोड भी रिसीव करते हैं, जिसकी वजह से वो कोड जब आप डालते हैं लॉग इन करने के लिए, उसके बाद ही वो लॉग इन होता है। तो ये दो प्रोसेस ऑफ लॉगिन है, जिसमें आप अपना पासवर्ड डालने के बाद एक कोड जो आपके मोबाइल नंबर या फिर आपके ईमेल आईडी पे आएगा, उसके बाद आप उसको लॉगिन के लिए यूज कर सकते हैं, जो कि ज्यादा सिक्योर रहता है।
करिश्मा, अगर मैं बात करूं पासवर्ड्स की, तो एक मजबूत पासवर्ड बनाने के लिए किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, और ये ऐसे कौन से पासवर्ड पैटर्न्स हैं जो रिपीट नहीं होने चाहिए?
जैसे कि नॉर्मली जब लोग लॉग इन करते हैं वो अपने नेम का यूज काफी करते हैं, सो दैट दे कैन रिमेम्बर इट इजीली। बट अगर आप अपने लॉग इन आईडी के साथ अपना नेम ही यूज कर रहे हैं, तो जो भी आपका पासवर्ड चुराने की कोशिश करेगा वो पैटर्न्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जनरली आप अपने नेम, अपने सरनेम या फिर अपने किसी फैमिली मेंबर के नेम पे पासवर्ड्स को ना रखें, क्योंकि वो डेटा लीक जो कर रहे होते हैं उनके लिए बहुत इजीली आइडेंटिफाइबल हो जाता है।
पासवर्ड्स की ही बात करते हैं, तो कितने समय में यूजर्स को अपना पासवर्ड बदलते रहना चाहिए, यानी कि इसका कोई मानक नियम होता है?
जनरली 3 months to 6 months में आपको अपना पासवर्ड चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर कोई डेटा लीक में आपने किसी गलत वेबसाइट पे लॉगिन में अपना वो पासवर्ड डाल दिया है और वो डेटा लीक में यूज हो चुका है, तो एटलीस्ट आप 3 months के टाइम में उसे चेंज करेंगे तो आपका अकाउंट ज्यादा सिक्योर रहेगा।
आजकल हम डेटा लीक या डेटा ब्रीच जैसे शब्द सुन रहे हैं, असल में ये डेटा ब्रीच होता क्या है?
डेटा लीक बेसिकली आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी भी जिसको आप नहीं जानते हैं उसके पास चले जाना, क्योंकि आपके मेल आईडीज वगैरह में मोस्टली काफी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहती है। तो जब आप जो पासवर्ड लॉगिन के लिए यूज करते हैं, अगर वो पासवर्ड किसी और के पास चला जाए तो उसकी वजह से आपका अकाउंट इनसिक्योर हो सकता है और आपका जो निजी डेटा है वो किसी और के पास पहुंच जाएगा।
जो कंपनियां होती हैं वो डेटा इकट्ठा करती हैं कस्टमर्स का, यानी उपयोगकर्ताओं का, तो ऐसे में कस्टमर कंसेंट किस तरह की भूमिका निभाता है?
कस्टमर कंसेंट का रोल इस इंफॉर्मेशन के लिए आता है कि वो कौन सा अपना डेटा कंपनीज के साथ शेयर करना चाहते हैं। जैसे कि लोकेशन इंफॉर्मेशन, जब आप किसी ऐप पे लॉग इन करते हो तो वो आपसे मांगती है कि क्या वो ऐप आपका लोकेशन ले हर वक्त, या फिर आप चाहते हो कि जब वो आपका जब आप ऐप यूज कर रहे हो सिर्फ तभी आपका लोकेशन यूज करे। तो इस टाइप की इंफॉर्मेशन के लिए आपको कंसेंट जो ऐप को देना होता है वो आपको ध्यान में रखना चाहिए।
सुरक्षा की यदि बात करें तो क्या केवल पासवर्ड पर निर्भर होना पर्याप्त है या फिर हमें 2-factor authentication भी करना चाहिए?
मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन काफी जरूरी है, क्योंकि पासवर्ड्स हर थोड़े टाइम में लीक हो सकते हैं, क्योंकि आप किसी भी वेबसाइट पे अगर लॉगिन करते हो कभी कभार आपको उस वेबसाइट के बारे में नहीं पता होता है जहां पर आप जा रहे हो। तो अगर आप सिर्फ पासवर्ड के ऊपर निर्भर करके लॉगिन कर रहे हो और वो पासवर्ड लीक हो गया तो आपका काफी अकाउंट्स का पासवर्ड लीक होने के चांसेस है। तो उससे सिक्योर रखने के लिए आपको हमेशा 2-factor authentication एनेबल करना चाहिए, ताकि आपके मोबाइल पे या फिर आपके ईमेल आईडी पे एक पासवर्ड या एक कोड आए, ताकि उसके बाद ही वो लॉगिन हो पाए। वरना अगर कोई और लॉगिन करेगा तो आपको नोटिफिकेशन भी आएगी कि आपके अकाउंट में किसी और जगह से लॉगिन हुआ है, तो वो आपके लिए सिक्योर ज्यादा रहता है।
करिश्मा, क्या आम यूजर्स को ये पता होता है कि उनका डेटा किस तरह से और कहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है?
काफी लोगों को, इनफैक्ट किसी भी नॉर्मल इंसान को नहीं पता होता है, एक्सेप्ट जो काम कर रहे हैं डेटा फील्ड में, कि उनका डेटा किस तरीके से यूज किया जा सकता है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस डिजिटल युग में यूजर्स की प्राइवेसी यानी उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता बनाए रखना कितना मुश्किल होता जा रहा है?
काफी, क्योंकि अब आप नोटिस करोगे कि हम हर चीज में अपना डेटा हर एक ऐप को, हर एक वेबसाइट पे, इनफैक्ट हर एक सोशल मीडिया साइट्स पे अपना डेटा हम खुद ही डालते हैं। उसकी वजह से ये डेटा काफी ज्यादा जगह पे पहुंच चुका है, तो इस टाइम पे उसको सिक्योर रखना और उसको कंट्रोल में रखना बहुत मुश्किल है।
करिश्मा, आपका SBS हिंदी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू।
आपको बता दूं कि ASD ने सलाह दी है कि बुनियादी बातें यानी बेसिक्स ही साइबर अपराध से बचाव का सबसे अच्छा तरीका है, और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिसके लिए कम से कम 2 प्रकार के आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की आवश्यकता होती है। इस अंश में प्रस्तुत की गई जानकारी सामान्य है। SBS न तो इससे सहमत है और न ही असहमत। SBS न्यूज के लिए इस खबर को आप सबके सामने SBS हिंदी में लेकर आई भव्या पांडे।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।